हेलो एंड वेलकम टू तब से अब तक। तब से अब तक में हम जिंदगी की बातें करते हैं। हम जिंदगी के उन क्वेश्चंस को समझने की और उनके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कई बार जिंदगी हमारे सामने लाके खड़े कर देती है, और फिर वो क्वेश्चंस हमें परेशान करने लगते हैं। वो क्वेश्चंस हमें परेशान करते हैं क्योंकि उनके आंसर्स हमें मिलते नहीं हैं, और जब उनके आंसर्स हमें नहीं मिलते तो हम रातों को जग के बैठ जाते हैं। हम दिन में चैन नहीं ले पाते, परेशान से रहते हैं। कई बार गुस्से को अपने अंदर दबा के रखते हैं, कई बार बदले की आग में जलते रहते हैं, कई बार चिंता में डूबे रहते हैं। कई बार सोचते हैं हम कि क्या ये चीज़ें जो हमें इतना परेशान कर रही हैं, क्या ये बातें औरों के जहन में नहीं आती, औरों को परेशान नहीं करती, खाली हमें ही परेशान करती हैं। और अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा है? हमने आखिर ऐसा क्या किया है, क्या बुरा किया है किसी का कि हमारे को ये चीज़ें इतना परेशान करती हैं? तब से अब तक में हम ऐसी ही बातें करते हैं। हाँ, मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि तब से अब तक में हम सुनते हैं कहानियाँ तब से अब तक की, क्योंकि वो कहानियाँ भी एक पार्ट है इस शो का, क्योंकि उन्हीं कहानियों में तो हमें आंसर्स मिलते हैं। वही कहानियाँ तो हमें ये बताती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि ये सारी चीज़ें औरों के साथ भी हुई हैं। यस ऑफ कोर्स, तब से अब तक शो में मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ, पर ये वो कहानियाँ बिल्कुल नहीं हैं जो बस कहानियाँ हैं। नहीं, ये वो कहानियाँ हैं जिनमें सेंचुरीज का विजडम है, जिसमें हमारे पुरखों की, हमारे एंसेस्टर्स की नॉलेज है, जिसमें पहले जी गई हजारों जिंदगियों की कहानियाँ हैं, कहानियों के भीतर कहानियाँ हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेके आती हूँ ऐसी कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं हैं, जो जिंदगियों के हिस्से हैं। वेलकम टू तब से अब तक। आज मैं तब से अब तक में आपसे बात करना चाहती हूँ रियल वर्सेस वर्चुअल की, सच वर्सेस वो सच जो सच नहीं होता लेकिन सच जैसा दिखता है, वो सच जो हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है। एक वो सच है जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे सामने है, जिसको और भी लोग देख सकते हैं, और एक वो सच है जो हमारे मानस में है। जब ये दोनों सच आपस में भिड़ते हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं, जब ये दोनों सच एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो फिर कौन सा सच सच रह जाता है? इल्यूजन्स जो हमारी आंखें, हमारा दिमाग हमें दिखाते हैं, वो इल्यूजन्स सच हैं, या जो हमारे सामने है, जिसके प्रूफ्स अवेलेबल हैं, जिसे दुनिया कहती है कि वो सच है, वो सच है? अचानक हम बड़े डेलिकेट ग्राउंड्स पर हैं। अचानक हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी नहीं दे पाए हैं। इनफैक्ट जो बातें आज मैं आपसे करूंगी, उन बातों में भी इसका आंसर नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये परेशानी जो आज हमारे सामने आती है, जब लोग हमें ये कहते हैं कि ये तो सब तुम्हारे दिमाग में है, ये तो तुम सोच रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है, जब लोग हमें ये कहते हैं तो हम ये सोचना शुरू करते हैं कि क्यों, अगर मुझे लग रहा है तो ये गलत क्यों है, और जो तुम कह रहे हो वो सच क्यों है? आज मैं इल्यूशंस की कहानी आपको सुनाती हूँ। ये एक बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बट इसमें बड़ी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो कोई हीरो नहीं है। इनफैक्ट वो हमारी हिस्ट्री का, सपोजिटली हमारी हिस्ट्री का और हमारी माइथोलॉजी का सबसे बड़ा विलन है। एक्चुअली नॉट सबसे बड़ा, बट हाँ, वन ऑफ द बिग विलन्स। सबसे बड़ा तो आई गेस रावण है। वो इतना बड़ा विलन समझा जाता है, और प्रॉब्ली वो शायद था भी कि हम उसका पुतला जलाते हैं। हम इसका पुतला नहीं जलाते, और ये महाभारत से कनेक्टेड है, रामायण से नहीं। ऑब्वियसली यू नो हु ही इज, वी आर टॉकिंग अबाउट दुर्योधन। दुर्योधन था एक नॉर्मल, थोड़ा बुरा सा आदमी। दुर्योधन ऐसा क्यों था? दुर्योधन ऐसा क्यों रहा? क्यों उसमें कोई बदलाव नहीं आया पूरी जिंदगी? क्यों वो बुरे पे बुरा होता गया? ये सारी बातें हम बाद में करेंगे कभी किसी और स्टोरी में। आज बातें हैं इल्यूजन्स की। तो लेट मी टेक यू इन टू दिस वर्ल्ड जिसे वेद व्यास ने क्रिएट किया था आज से हजारों साल पहले। इस वर्ल्ड में जो एक राइटर ने क्रिएट किया, जो कि प्रॉब्ली हिस्टोरिकल कहानियों पे बेस्ड था, उस समय की हिस्टोरिकल कहानियों पे बेस्ड था, उस दुनिया में कौरव थे, पांडव थे, और फॉर रीजंस जो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, उनके बीच में कोई बहुत बड़ा आई वुड से कि उनके बीच में प्यार का समंदर ठाठे नहीं मार रहा था। बट ऑफ कोर्स जैसे कि आज भी होता है, रिलेटिव्स आर रिलेटिव्स, चाहे वो एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, वो एक दूसरे को इनविटेशन ज़रूर भेजते हैं शादी ब्याह के, जन्मों के, एंड समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली सैडली डेथ्स के। कभी कभी ये इन्विटेशंस किसी ऐसे पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड नहीं होते, ओकेजन से रिलेटेड नहीं होते। कई बार ये इसलिए होते हैं क्योंकि यू वॉन्ट टू रियली शो ऑफ। आई डू नॉट नो वॉट वॉज द रीज़न, बट जब पांडवों को धृतराष्ट्र ने आधा राज्य दिया और कहा कि तुम खांडव प्रस्थ में रहो और तुम अपना राज करो वहाँ पर, और तुम अपने राज करने के लिए अगर कोई राजधानी बनानी है तो वो बनाओ, तो पांडवों ने राजसू यज्ञ किया और उसके बाद में उन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई, बड़ा खूबसूरत सा एक नगर बसाया जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हस्तिनापुर यानी हाथियों का नगर जहाँ कौरव रहते थे, और इंद्रप्रस्थ वो जगह जो पांडवों ने बसाई, वो तकरीबन एक दूसरे से कैसे लोकेटेड थी, क्या कहाँ पर थी वो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हस्तिनापुर वॉज नियर मेरठ एंड इंद्रप्रस्थ वॉज नियर दिल्ली। तो फासला ज़्यादा नहीं था, आसपास ही थे। क्वाइट लाइक यू नो फैमिलीज़ में अक्सर जब पेरेंट्स झगड़ा नहीं चाहते बच्चों के बीच में, तो वो क्या करते हैं कि वो ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर एक भाई को दे देते हैं और सेकंड फ्लोर दूसरे भाई को दे देते हैं। तो कुछ इस तरह की बात थी कि वो पास पास भी थे और दूर भी थे। ऑब्वियसली राजसूय यज्ञ हुआ, सबको इन्वाइट किया गया जो रिलेटिव्स थे, जो फ्रेंड्स थे, जो ऐसे राजा थे जिनके साथ कोई संधि हुई हुई थी, वो सारे आए, और ऑब्वियसली दुर्योधन भी आया। तो जब दुर्योधन आया, क्योंकि ही वॉज फैमिली, दैट टर्म फैमिली इज विद इन कोट्स, सो सिंस ही वॉज फैमिली, उसको साथ में ही ठहराया, अपने महल में ठहराया पांडवों ने। और वो जो महल था वो बहुत ही खूबसूरत महल था, इट वॉज जस्ट सुप्रीमली ब्यूटिफुल। दुर्योधन जो कि पहले ही पांडवों से काफ़ी जलता था, जब उसने वो सब देखा तो जो उसके अंदर की जलन थी वो और बढ़ गई, उसे और गुस्सा आया, उसे और बुरा लगा। खैर, दिस वॉज नेचुरल, एक खूबसूरत सा महल है, बिग डील, बट उस महल को बनाया था मायासुर ने। मायासुर एक मायावी राक्षस था जो खांडव प्रस्थ में रहता था, और जब खांडव प्रस्थ का जो एरिया था वो धृतराष्ट्र ने पांडवों को दे दिया था, तो उनको फिर सब कुछ बिगिनिंग से बनाना था, और बिगिनिंग से बनाने के लिए उन्होंने खांडव प्रस्थ को पहले जलाया था। तो जो मायासुर वहाँ पे रहता था, जो कि बाकी जो लोग वहाँ रहते थे खांडव प्रस्थ में, जो नाग रहते थे, जो और जानवर रहते थे, जब वो चले गए वहाँ से, तो मायासुर ने जब कृष्ण से कहा कि कृष्ण मुझे छोड़ दिया जाए, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, मैं मरना नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ऑल राइट, तुम्हारे एरिया को हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन यू नीड टू डू समथिंग फॉर अस। तो उसने कहा क्या? तो कृष्ण ने कहा कि क्योंकि माया पे तुम्हारा इतना होल्ड है, तुम इल्यूजन्स के मास्टर हो, तुम एक महल बनाओ जिसमें पांडव रह सकें। तो ये जो काम था महल बनाने का, ये मायासुर को मिला था, और उसने जब वो महल बनाया था तो उसने जगह जगह ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई थी जो बहुत ही मायावी थी, जो कि एक्चुअली इल्यूजनरी थी। आप देखते कुछ थे और वो एक्चुअली होता कुछ था। अब जब दुर्योधन आया वहाँ रहने के लिए, ही हैड एब्सोल्यूटली नो आइडिया कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हैं और क्या ऐसी हैं जो सिर्फ दिख रही हैं। तो एक जगह एक तालाब सा था, तो दुर्योधन जब रात को सो करके दूसरे दिन मॉर्निंग में उठा और बाहर निकला, तो उसने बाहर देखा कि बड़ा प्यारा सा सुंदर सा गार्डन सा है, और वहाँ पे एक अच्छा कोर्टयार्ड है, सब कुछ बड़ा सुंदर लग रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। दूसरी तरफ थोड़े फूल लगे हुए थे, तो उसने सोचा कि बाहर मैं दूसरी तरफ जा करके थोड़ा फूलों को सूंघता हूँ, या जो भी सोचा होगा उसने। ही वॉन्टेड टू गेट नियर टू द फ्लावर्स। तो जब वो चला और उसने पैर रखा कोर्टयार्ड में, उसका पैर तो नीचे चला गया, क्योंकि एक्चुअली वो तालाब था और वो देखने में कोर्टयार्ड सा लग रहा था। सडनली उसने देखा कि वो तो एक तरह से एक पूल के अंदर है, और वो थोड़ा घबरा सा गया और थोड़ा परेशान सा हो गया, और उसके चेहरे पे वो सब आ गया। ये एक ऐसी चीज़ थी जो सहदेव ने देख ली, प्रॉब्ली औरों ने भी देखी होगी, बट इन माई इमेजिनेशन सहदेव ने पहले देखी, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि सहदेव ने पहले देखी, मैं इसलिए इमेजिन करती हूँ क्योंकि सहदेव छोटे थे, और जो छोटा होता है वो सबसे नटखट होता है, तो प्रॉब्ली सहदेव ने ये बातें बाकियों को बता दी जाके। एंड इट वॉज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जो इंसान उनसे इतना चिढ़ता है, उनको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता है, वो इंसान इस समय, मतलब एक तरह से इट वॉज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल जोक। खैर, दुर्योधन रियलाइज्ड कि भाई यहाँ पे शायद जो चीज़ें हैं वो जैसी दिखती हैं वो वैसी हैं नहीं, बट ही वॉज स्टिल नॉट श्योर, उसको लगा शायद मुझसे ही कुछ भूल हुई है। खैर, वो तैयार वगैरह होकर के निकला, प्रॉब्ली वो नाश्ता करने जा रहा होगा। तो जब वो निकला, तो जो नेक्स्ट कोर्टयार्ड आया वहाँ पे उसने देखा कि सामने जाने के लिए उसको एक एक्चुअल पूल को क्रॉस करना है, नीचे पानी है, उसको पानी दिखा। तो जब उसको पानी दिखा तो उसने अपनी धोती ऊपर कर ली कि वो क्रॉस कर सके बिना कपड़े गीले किए। उसे तो पता नहीं था, लेकिन नकुल और सहदेव और अर्जुन और भीम कहीं से छुप के उसे देख रहे थे, और जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी हंसी छूट गई, हंसने लगे वो। उसे बड़ा बुरा लगा, बड़ी इंसल्ट सी फील हुई, लेकिन फिर भी क्या करता वो। दिन में फिर एक दो बार ऐसा हुआ उसके साथ। एक बार उसने सामने एक दरवाज़ा देखा, तो जब उसने दरवाज़ा देखा तो उसने हैंडल खोलने की कोशिश की उसका, बट देयर वॉज नो डोर, उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे दरवाज़ा है। फिर एक जगह उसने देखा कि खुला दरवाज़ा है, ही जस्ट ट्राइड टू वॉक इन, ऑब्वियसली उसकी नाक पे चोट लग गई। ये तो खाली हैरी पॉटर में होता है ना कि यू हैव प्लेटफॉर्म 9-3/4, प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच में एक वॉल आती है, और उस वॉल के थ्रू आप गुजर के प्लेटफॉर्म 9-3/4 पे पहुँचते हैं। और एक्चुअली लंदन में उन्होंने वो बना भी रखा है, जहाँ पर एक जगह है जहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जहाँ पे आपकी ट्रॉली आधी दीवार के अंदर दिखती है, एज इफ़ यू आर गोइंग टू प्लेटफॉर्म 9-3/4। खैर, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही इल्यूजन्स थे। फाइनली एक जगह उसने सामने बंद दरवाज़ा देखा, और चूंकि बेचारा सुबह से ये झेल रहा था, बार बार उससे गलतियाँ हो रही थी, इस समय ही न्यू कि ये जो चार पांडव हैं मुझे देख रहे हैं, तो ही डिडंट वॉन्ट टू गो रॉन्ग। तो
उसने सामने बंद दरवाज़ा देखा, उसने अज्यूम किया कि ये तो खुला है, ये तो मेरे को एक तरह से आँखों का नज़रों का धोखा हो रहा है, सो लेट मी जस्ट गो थ्रू इट, और वो उसमें से जाने लगा। बट एक्चुअली देयर वॉज अ रियल डोर, और वो नहीं जा पाया। और इस बात पे पांडव खूब हंसे। जैसे मैंने पढ़ा है, चार पांडव, युधिष्ठिर वहाँ नहीं थे, द्रौपदी वहाँ नहीं थी, एंड आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि जिस वर्जन को मैं पढ़ती हूँ उसमें द्रौपदी वहाँ नहीं थी। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी और वर्जन में द्रौपदी थी, द्रौपदी ने शायद कुछ कहा भी, हंसी भी, और उससे भी दुर्योधन को बुरा लगा, क्योंकि इस इंसल्ट को एक वजह बताया जाता है कि दुर्योधन क्यों बहुत विगरसली, बहुत जोर शोर से चीरहरण के पक्ष में था। खैर, एज आई टोल्ड यू इन माई वर्जन ऑफ थिंग्स, द्रौपदी वॉज़न्ट देयर, लेकिन ये चार पांडव खूब हंसे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और दुर्योधन बहुत इंसल्टेड फील कर रहा था। इट्स एन ऑब्वियस थिंग, जब ऐसा कुछ होता है आपके ऊपर, सब लोग हंसते हैं तो आपको बुरा लगता है। जब वो वापस आया हस्तिनापुर और अपने फादर से मिलने जा रहा था, शकुनी ने बीच में उसे धर दबोचा, और शकुनी ने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो इतने दनदनाते हुए, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? तो दुर्योधन ने सारी बात शकुनी को बताई। शकुनी ने कहा कि बेटे ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे यू शुड हैंडल इट। और फिर शकुनी ने वो आइडिया दिया जो डाइस गेम का आइडिया था, गैम्बलिंग का आइडिया था, जिसकी वजह से फिर सारी प्रॉब्लम्स हुई। ही सेट द व्हील्स इन मोशन, उसने समझाया, उसने कहा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम जा करके बस धृतराष्ट्र को बता दोगे और तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। यू शुड सीक रिवेंज, यू शुड डू समथिंग जिससे पांडवों को जिन चीज़ों पे गुरूर है वो चीज़ें ही तुम्हारे पास आ जाएं। तुम्हें चाहिए ना वो सब, वो मायावी महल तुम्हें चाहिए, वहाँ की शान शौकत तुम्हें चाहिए, वहाँ की चीज़ें तुम्हें चाहिए, वहाँ की, यू वॉन्ट टू बी द रूलर ऑफ इंद्रप्रस्थ टू। और अगर तुम ये चाहते हो, तुम्हें पांडवों को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और ये एक तरीका है। दुर्योधन ने जब ये सुना तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने रियलाइज़ किया कि पांडवों को निपटाने का ये एक अच्छा तरीका है, और फिर वो शकुनी को लेकर के पहुंचा धृतराष्ट्र के पास, और फिर आगे की उनकी कॉन्वर्जेशन हुई। नाउ आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इल्यूजन्स। ये स्टोरी इल्यूजन्स के बारे में है, और ये स्टोरी खाली उन इल्यूजन्स के बारे में नहीं है जो दुर्योधन के सामने आए। ये स्टोरी खाली इस बारे में नहीं है कि पांडव -1 -1 युधिष्ठिर दुर्योधन पे हंसे। अगर हम फिलोसॉफिकली इस स्टोरी को देखें तो ये स्टोरी इसके बहुत आगे जाती है। ये जो वन अपमैनशिप होती है, जो खुद को दूसरे से बढ़ चढ़ कर दिखाना होता है, ये सारे करते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कुछ हद तक ये नहीं करता। वी ऑल डू इट। जब कोई हमारे घर में आता है तो हम उसे बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, उसे वो सारी चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा स्टेटस, हमारा रुतबा उसे दिखाती हैं। दिस इज़ वाई ड्राॅइंग रूम इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल रूम ऑफ ऑल रूम्स इन आवर हाउस, क्योंकि ये हमारा वो चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। जब कोई हमारे घर में आता है जिसे हम बहुत क्लोजली नहीं जानते, तो हम उसे ड्राॅइंग रूम में ले जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट दैट पर्सन टू सी। हमारा एक प्राइवेट सेल्फ होता है, एक पब्लिक सेल्फ होता है, और पब्लिक सेल्फ में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपना एक ओहदा दिखाएं, एक रुतबा दिखाएं। पांडव भी वही कर रहे थे। पांडव अपने मायावी महल में रह करके वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। अगर उनको वो मायावी महल इतना ही पसंद था और वो खाली अपनी खुशी के लिए उस तरह के डिस्ट्रैक्शंस में, उस तरह के इल्यूजन्स में रहना चाहते थे,
तो ये कोई ज़रूरी नहीं था उनके लिए कि वो अपने सारे गेस्ट्स को वही चीज़ें एक्सपीरियंस कराएं। अगर वो एक्सपीरियंस भी करा रहे थे तो देर वॉज अ गुड वे टू मेक दुर्योधन एक्सपीरियंस ऑल दैट। वो दुर्योधन को प्यार से दिखा भी सकते थे कि दुर्योधन ये देखो हमने कितना अच्छा पॉन्ड बनाया है, रखो रखो पैर रखो। और जब फिर वहाँ पर दुर्योधन पैर रखता तो आप हल्की सी स्माइल देते और कहते दैट इज़ वॉट इज़ सो स्पेशल। तो वो दुर्योधन को किसी और तरीके से भी दिखा सकते थे, उसे ढंग से, उसे प्यार से, उसे एज अ फ्रेंड, उसे एज अपना लेके दिखा सकते थे। क्या उन्होंने दिखाया ऐसे? वो दुर्योधन को ले जा सकते थे और दिखा सकते थे कि दुर्योधन भाई ये देखो हमने ये जो महल बनवाया है इस महल में चीज़ें वैसी हैं जैसी दिखती नहीं हैं, पैर रख के देखो इस पे, ये पानी है पैर रख के देखो। दुर्योधन जब मना करता वो कह सकते थे देखो कोशिश तो करो रखने की, पैर कुछ नहीं होगा। और जब वो पैर रखता तो वो अचरज में पड़ जाता एंड इट वुड हैव बीन गुड फन फॉर एवरीवन। हम ये कहते हैं कि शकुनी जड़ था सारी बुराइयों की, हम कहते हैं कि शकुनी ना होता तो महाभारत ना होती। मैं कई बार महाभारत में ये ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि कब कब ऐसा हुआ कि पांडवों ने आगे बढ़कर दुर्योधन से दोस्ती करने की कोशिश की। आई अंडरस्टैंड पांडव बहुत ग्रेट थे, आई लाइक देम, दे आर द हीरोज, दुर्योधन इज द विलन, बट वेयर वॉज द नीड टू शो ऑफ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इल्यूजन्स। चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, ये हर चीज़ के साथ होता है। दुर्योधन जब चीज़ों को देख रहा था उसे नहीं पता था कि वो चीज़ें क्या हैं, वो उन्हें डिस्कवर कर रहा था। डिस्कवरी में भी एक मज़ा है, प्रोवाइडेड कोई आप पे हंसना रहा हो। जब कोई आप पर हंसता है तो ज़ख्म बहुत डीप होते हैं, जब कोई आप पे हंसता है तो जो उस हंसी के शूल हैं वो बहुत गहरे गढ़ते हैं, आसान नहीं होता उन्हें निकालना। और यही चीज़ हो रही थी दुर्योधन के साथ। अगर वो खुद अकेले उन चीज़ों को देख रहा होता, अगर वो सारी चीज़ें कहीं और होती पांडवों के पास ना होती तो वो उन्हें इंजॉय कर रहा होता। बट अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग वॉज अगेंस्ट हिम। जब टाइड्स टर्न अगेंस्ट यू, यू स्टॉप इंजॉइंग लिटिल थिंग्स इन लाइफ, एंड दैट इज़ वॉट वॉज हैपनिंग विद दुर्योधन। और ये कन्फ्यूजन उसका बढ़ता गया बिकॉज ऑफ दीज इल्यूजन्स दैट ही वॉज एक्सपीरियंसिंग वन आफ्टर द अदर। एक के बाद एक जो ये इल्यूजन्स चल रहे थे उन्हें बार बार देख करके उसकी ये सिचुएशन हो गई कि जहाँ वो इल्यूजन नहीं था वहाँ भी उसे वो इल्यूजन दिखा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम चीज़ों को गलत समझते हैं, चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं। और जब चीज़ें हमें इतना कंफ्यूज करती हैं, बातें हमें इतना कंफ्यूज करती हैं कि इट बिकम्स रूटीन, कंफ्यूजन बिकम्स रूटीन फॉर अस, तो जो चीज़ क्लियर होती है, साफ होती है, डायरेक्ट होती है, वो भी हमें नहीं दिखती। जैसे दुर्योधन को नहीं दिखी, जो लास्ट दरवाज़ा था वो एक बंद दरवाज़ा था, लेकिन दुर्योधन को लगा कि वो खुला हुआ दरवाज़ा है एंड ही ट्राइड टू वॉक थ्रू इट। नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू थ्रू ऑल दीज स्टोरीज? बहुत सारी चीज़ें हैं स्टोरी में, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्योंकि रियल स्टोरीज आर ऑलवेज वेरी कॉम्प्लेक्स। हु इज़ टू से कि वेदव्यास जब ये स्टोरी लिख रहे थे, जब वो महाभारत लिख रहे थे, तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं थी, बिल्कुल थी, और तभी उन्होंने इसको इस तरह से लिखा। रियल लाइफ भी कॉम्प्लेक्स होती है, रियल लाइफ में भी इल्यूजन्स होते हैं, और वो इल्यूजन्स फिर हमें सच देखने नहीं देते। वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ द इल्यूजन्स। ऐसे इल्यूजन्स जो जिंदगी हमें दिखाती है। कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, कहानी तो वहीं ख़त्म हो गई थी जब दुर्योधन शकुनी से मिलके धृतराष्ट्र के पास गया, वहाँ ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हाँ, अभी जिंदगी से इस कहानी का जुड़ना बाकी है। आइए जोड़ते हैं इस कहानी के इल्यूजन्स के पार्ट को अपनी जिंदगी के इल्यूजन्स के पार्ट से। एज आई सेड, देयर इज अ बिट ऑफ फिलॉसफी हियर। हमारी जिंदगी में बहुत सारे इल्यूजन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इल्यूजनरी होती हैं, रिलेशनशिप्स इल्यूजनरी होती हैं, लोग हमसे कैसे कनेक्ट होते हैं वो पॉसिबली इल्यूजनरी होता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली इज। हमारा दिमाग हमें क्या दिखा रहा है, विज़वी एक्चुअल क्या है, इन दोनों में फर्क होता है। यूजुअली हम वो देखते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारा दिमाग डिपेंडिंग ऑन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें दिखा रहा है। आई गिव यू एग्जाम्पल्स नाउ। आपके फ्रेंड्स हैं, नॉट ऑल फ्रेंड्स बट वन ऑफ द फ्रेंड्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और अपेरेंटली वो भी आपको बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है। वो फ्रेंड ये रियलाइज़ करता है कि आप एक अच्छे राइटर हैं। वो ये भी रियलाइज़ करता है कि पब्लिश कराने का अपने को आपके पास कोई स्कोप नहीं है। तो आपका जो वो फ्रेंड है वो आपकी क्रिएशन, आपकी स्टोरी ले लेता है और उसे वो अपने नाम से पब्लिश कर देता है। आपको ये सब तब पता लगता है जब 6-8 महीने तक आपका फ्रेंड आपसे कुछ बात नहीं करता, वो आपसे थोड़ा अलग सा हो जाता है, और जब आप उसे फ़ोन करते हैं तो वो कोई ख़ास बातचीत नहीं करता आपके साथ। एंड आफ्टर अ वाइल यू रीड योर ओन स्टोरीज इन अ बुक विच हैज़ बीन पब्लिश्ड। क्या हुआ? क्या आपकी दोस्ती जो पिछले 20 साल से चल रही थी वो एक इल्यूजन थी? शायद तब नहीं थी जब वो चल रही थी, लेकिन जैसे ही आपके दोस्त के दिल में लालच आया, आपकी दोस्ती इल्यूजन बन गई। रियलिटी एक सेल्फिश रिलेशनशिप थी, वन साइडेड रिलेशनशिप थी। जो वो फील कर रहा था वो आप नहीं फील कर रहे थे। सडनली फ्रॉम बीइंग अ फ्रेंड यू बिकेम हिज और हर सोर्स ऑफ कंटेंट। आप बदल गए उसके लिए, उसकी नज़रों में, उसकी नज़रों में आप बदल गए, लेकिन आपकी नज़रों में वो फिर भी आपका ही दोस्त था या थी। तो तब से जब ये बदलाव आया, तब से आज तक की जो रिलेशनशिप आपके सामने थी, जो आपको दोस्ती लग रही थी, वो एक इल्यूजन थी। आपको ये दोस्ती का इल्यूजन सालों साल याद रहेगा, तंग करेगा, लेकिन फिर क्या आप दोस्ती करना छोड़ देंगे? शायद नहीं। लेकिन आपके जो दूसरे दोस्त हैं या फिर जो आप फ्यूचर में दोस्त बनाएंगे, उन सब दोस्तों को आप शक की नज़र से देखेंगे। क्योंकि जब इल्यूजन टूटता है और आपको पता लगता है कि मैं तो बेवकूफ़ बन रहा था, मैं तो एक इल्यूजन में था, तो फिर जो सच होता है, जो रियल होता है, उसे भी आप इल्यूजन का चश्मा लगा के देखते हैं, जैसे दुर्योधन के साथ हुआ। सो दैट वॉज अबाउट इल्यूजन्स, दैट वॉज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। एक और पार्ट है स्टोरी में। एज आई सेड, शकुनी से जब मुलाकात हुई दुर्योधन की वापस आकर के, तो शकुनी ने उसको कुछ चीज़ें कहीं। शकुनी हैड हिज ओन रीजन्स, वी आर नॉट गेटिंग इन टू वाई शकुनी डिड वॉट ही डिड। उसके लिए भी कुछ स्टोरीज हैं, फिर कभी आपको सुनाऊंगी। मुझे 100% कन्फर्मेशन नहीं है कि वो स्टोरीज ठीक हैं या नहीं हैं, इसलिए मैं आपको सुना नहीं रही हूँ। नॉट दैट ऑल द स्टोरीज दैट आई टेल यू आर रियल, बट हाँ, अगर हम अपने किसी ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो जितना हो सके हमें ठीक बात करनी चाहिए। तो आई एम टॉकिंग अबाउट शकुनी का उस समय दुर्योधन से मिलना, और फिर दुर्योधन और शकुनी का धृतराष्ट्र के पास जाना, क्योंकि इसी फैसले ने कि वो साथ गए, इसी बात ने कि वो साथ गए, एक तरह से महाभारत की नींव रखी, उस युद्ध की नींव रखी, क्योंकि उसी के बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अलाउ किया कि वो इनवाइट करे युधिष्ठिर को तो जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो दूसरी छोटी सी बात हम देख रहे हैं, वो है आग में घी डालने की बात। दुर्योधन को शुरू से हम ये सोचते हैं कि वो एक बड़ा बुरा कैरेक्टर था, वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था, बट द फैक्ट इज उसमें रिडीमिंग फीचर्स थे, ऐसा नहीं है नहीं थे। आप बोलेंगे क्या, कौन से? वो कर्ण का अच्छा दोस्त था, दैट वॉज वन। वो अपनी वाइफ पे बहुत ट्रस्ट करता था, दैट वॉज टू। शक्की नहीं था, वो जनरली ट्रस्ट करने वाले लोगों में से था। बट द पॉइंट इज कि दुर्योधन को बैड से वर्स बनाने में शकुनी का पूरा हाथ था। शकुनी हैड हिज ओन रीजंस। शकुनी उकसा रहा था दुर्योधन को, वो चाहता था कि युद्ध हो। एज आई सेड, उसके अपने रीजंस थे, वो चाहता था, बट दुर्योधन वॉज प्लेइंग इन टू हिज हैंड्स। जो वो दुर्योधन से कराता जाता था, दुर्योधन वो करता जाता था। दुर्योधन वॉज सराउंडेड ईदर बाय पीपल जो उसकी बिडिंग करते थे, जैसे कि कर्ण और दुशासन, या फिर जिनका कहा वो मानता था, जैसे शकुनी। आप इसे चांडाल छोकरी कह लीजिए, चाहे कुछ कह लीजिए, यही थे जो क्लोजेस्ट थे दुर्योधन के। दुर्योधन ने शकुनी की बातें अगर शुरू से ना मानी होती, प्रॉबेबली दुर्योधन सुधर सकता था। आई एम नॉट डिनाइंग दिस कि जब से दुर्योधन पैदा हुआ, उसकी फैमिली में सब परेशान थे। इन फैक्ट धृतराष्ट्र को ये सजेशन भी दिया गया था कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो, ये बच्चा कुल को डुबोएगा। पर धृतराष्ट्र के अंदर जो प्यार था एक बेटे के लिए, उसने धृतराष्ट्र को रोक लिया। धृतराष्ट्र को ये कहा गया था कि तुम्हारे इतने और बच्चे हैं, 99 और बेटे हैं, एक बेटी है, इस बच्चे को जाने दो, खत्म करो इसे। बट धृतराष्ट्र ने ये बात नहीं मानी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचर वाइज दुर्योधन वॉज नॉट अ वेरी गुड पर्सन, बट डिड ही हैव टू बिकम वॉट ही बिकेम? क्या दुर्योधन अगर शकुनी की बातें नहीं मानता तो वो इतना बुरा होता? अगर वो उस दिन, उस पर्टिकुलर डे पे शकुनी की बात नहीं मानता और धृतराष्ट्र को जा करके ये नहीं कहता कि उन्हें, युधिष्ठिर को, आप प्लीज़ डाइस के गेम के लिए इनवाइट करो, अगर वो ये नहीं कहता तो आगे कुछ नहीं होता। आफ्टर अ वाइल दुर्योधन सब भूल जाता शायद, और दोनों, कौरव और पांडव, दोनों अपने अपने राज्य में खुशी खुशी रह रहे होते। कुड हैव हैपेंड। सो जो दूसरी चीज़ मैं सोचती हूँ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कई बार हम रिलेशनशिप्स के मसले पर दूसरों से बातें करते हैं, कई बार हम कुछ और मसलों पे, जैसे कि पैसे का मसला हो गया, या फिर बच्चों की एजुकेशन का मसला हो गया, कई ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोगों से बातें करते हैं और लोग हमें सजेशंस देते हैं। इसके बारे में एक चीज़ बस मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी आप किसी से सजेशन लें तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखें। आप ये ज़रूर देखें कि वो किस तरह का इंसान है, काफ़ी ऑब्जेक्टिवली देखें। डोंट अज्यूम कि अगर कोई आपका पड़ोसी है और उसका बच्चा भी 12वीं में है और आपका बच्चा भी 12वीं में है, या फिर कोई आपका पड़ोसी है जो अभी अभी उसका डिवोर्स हुआ है या उसका ब्रेकअप हुआ है, या आपका कोई फ्रेंड है जिसका ब्रेकअप हुआ है, आप उससे जा रहे हैं परामर्श करने अपनी रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आप उस पड़ोसी से पूछ रहे हैं कि आप अपने बेटे के लिए क्या कर रहे हो, तो मैं भी वही कर लेता हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट टेकिंग सजेशंस इज़ अ बैड थिंग, लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले, उन सजेशंस को यूज़ करने से पहले, आप ये ज़रूर देखें इस समय उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। उसके कोई हिडन मोटिव्स तो नहीं हो सकते? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से ही दुखी है, हार खा के बैठा है चीज़ों से, और वो आपको उसी तरफ झुकाएगा? इट्स क्वाइट पॉसिबल। वी शुड बी केयरफुल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में एक महाभारत हो। हम नहीं चाहते कि हम दुर्योधन बने। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाए। हम ये नहीं चाहते कि कोई हम पर बेकार में हंसे। क्योंकि हम ये सारी चीज़ें नहीं चाहते, इसलिए वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. दिस डजंट मीन दैट वी शुड स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल ऑल टुगेदर. इट्स जस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन वो इंसान किस सिचुएशन में है, वो किस तरह का इंसान है, वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल. हमेशा याद रखिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, जो मैंने किताबों में पढ़ा है उससे भी बता रही हूँ, कि जो बेसिक नेचर है इंसान का, बेसिक नेचर, वो नहीं चेंज होता. वो बेटर हो सकता है, वो इंसान कम घातक हो सकता है, उसकी दोस्ती लेस फेटल हो सकती है, लेकिन कैन अ पर्सन चेंज कंप्लीटली? बहुत कम ऐसा होता है. आई नो कि अभी शायद आप में से कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि वाल्मीकि तो पहले डाकू थे, हो गए ना चेंज. वी शुड नेवर टेक वन एग्जाम्पल. किसी चीज़ का अगर एक एग्जाम्पल हो और किसी दूसरी चीज़ के हज़ार एग्जाम्पल्स हों, गो बाय हज़ार एग्जाम्पल्स, क्योंकि वो चीज़ बार बार होती है. उसके होने की पॉसिबिलिटी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी और हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, वो ज़्यादा होती है. वेल, विथ दैट आई वॉन्ट टू नाउ से गुड बाय. आज मैंने आपसे कुछ ज़्यादा ही हैवी काइंड ऑफ स्टफ शेयर किया है. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट या समटाइम्स वी हैव टू टॉक अबाउट स्टफ दैट मीन्स सो मच मोर. बाय, फिर मिलूंगी आपसे, फिर लेके आऊँगी एक नई कहानी, फिर लेके आऊँगी कुछ और ऐसी बातें, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको और मुझे बराबर परेशान करते हैं. बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीक अहेड. मुझे आपसे एक और बात कहनी थी, वो ये कि तब से अब तक शो अब गाना, अमेज़न म्यूज़िक और जियो सावन पर भी अवेलेबल है. तो अगर आप इनमें से किसी ऐप पर इसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लुक फॉर द तब से अब तक शो ऑन दीज ऐप्स. थैंक यू, बाय.